वाले की है। स्वभाव के विषय में कुछ कहा जाता है, मनुष्य का जो स्वभाव है ये बदला तो जाता है किंतु थोड़ा कठिन है। किसका क्रोध का स्वभाव पड़ जाता है, किसी का लोभ का स्वभाव पड़ जाता है, किसी का एक प्रकार से काम का स्वभाव पड़ जाता है। स्वभाव के वहां अनेक प्रकार के दोष होते हैं और सब दोषों से छूटने से मुक्ति होती है। तो स्वभाव का परिवर्तन जो है ईश्वर की कृपा से होता है, ये तो बड़ा ही मुश्किल है। हमने ये बात देखी है और वर्तमान में देख भी रहे हैं। आपका स्वभाव यदि खराब है तो आप चाहो तो उसका सुधार कर सकते हो और दूसरा कोई चाहे तो सुधार होना मुश्किल है। मैं ये चाहूं कि भी आपके स्वभाव का सुधार होना चाहिए और आप नहीं चाहते तो होना मुश्किल। तो आपको यदि अपने स्वभाव के ऊपर संतोष है तब तो बस बड़ा है, और यदि आपकी धारणा में ये कि मेरा स्वभाव बहुत खराब है, इसकी मरम्मत होनी चाहिए, इसका सुधार होना चाहिए, तो आप इसका सुधार कर सकते। आपको कभी इसके विषय के बीच के वहां निराश नहीं होना चाहिए कि हमारे स्वभाव का सुधार होगा ही नहीं, क्योंकि किसी कवि ने कहा है कि जिनका पया स्वभाव जाति जीव से नीमन मीठा हो सिंचो गुड़ घी से। इसका ये उत्तर है, परंतु इसका अर्थ बदलाया जाता है। इसका मतलब यह है कि जिनका जैसा स्वभाव पड़ गया वो मर्सी ना उसके साथ जैसी है स्वभाव। जैसे नीम जो खारा होता है उसको घी और गुड़ से सींच दिया जाए नीम को तो वो खारा ही रहेगा क्योंकि उसका स्वभाव ही खारा बने। तो इसलिए एक प्रकार से चाहे उसको कितना ही उपदेश करो, जैसे नियमित होना मुश्किल है ऐसे उसके स्वभाव का सुधार होना मुश्किल है। ये दो आकार है, जो पूर्व पक्षी जो निराश हो चुका है स्वभाव के सुधारने के लिए उसका यह वचन है इसका सुधार होना कठिन है, किंतु असंभव बात नहीं है। और हम लोगों को ये बात असंभव माननी भी नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग आशावादी हैं और आशावादी होना चाहिए। तो स्वभाव का सुधार होता है। इस दुआ का भी तात्पर्य कठिनाई में है, कोई आदमी एक प्रकार से ऐसा नहीं मान ले कि हो ही नहीं सके। हमने देखा है कि स्वभाव पर बड़ा भारी असर पड़ता है, नीच जो आदमी है उसके स्वभाव पर भी असर पड़ता है। धर्मात्मा तो भाषी क्या है, महाभारत के बीच के मां वन पर्व में कथा थी, एक समय के बीच के मां दुर्योधन आदि चंडाल चौकड़ी ने क्या उनको चंडाल चौकड़ी कहते थे, दुर्योधन दुशासन शकुनी और कर्ण तो चारों का गुट था, इसको चारों को चंडाल चौकड़ी कहते। इन लोगों ने ये निश्चय किया कि पांडव लोग वन में इस समय में असहाय है, माने कोई भी बंग पास में मदद नहीं, न रुपयों की न बल की न सेना की कुछ भी नहीं है। और बहुत दिन तक वन में रह करके उनका शरीर भी ऐसा सूख गया है, ऐसे मौके में समझो कि अपनी सेना की चढ़ाई उनके ऊपर कर दे में और वहां उनको मार डालें तो हमारा राजसभा के वास्ते निष्कंटक हो जाए। सदा से उसका स्वभाव बहुत ही खराब था दुर्योधन का, किंतु ये जो हुक्म है तो राजसभा से ले लेना चाहिए अटकोर से, क्योंकि कोई भी राजकार्य किया करते थे तो उसका हुक्म ले लिया करते। तो ये प्रस्ताव रखा सभा के बीच के मां भीष्म जी के सामने कि हम लोग घोष यात्रा के वास्ते वन में जाना चाहते हैं। घोष यात्रा का मतलब है लक्ष्मी का मेला होता है और उसमें लोग गवां की सेवा के उद्देश्य को लेकर के गौशाला आदि में जाते हैं। इस प्रकार से थी, वहां कोई तिथि कायम नहीं थी, वह एक प्रकार से गौ की सेवा के वास्ते, गौ के दर्शन के वास्ते यात्रा करते, तो उसका नाम था घोष यात्रा। तो दुर्योधन चक्रवर्ती राजा थे, पृथ्वी के बीच के वहां उनका शासन था, चारों तरफ ऐसे उनके वन और बगीचे थे, जिन्हें जिन्हें गया था। तो भीष्म जी ने कहा कि जिस दिशा के वहां पांडव लोग तपस्या कर रहे हैं, उस दिशा के वहां नहीं जाना, और उसको छोड़कर के यहां तुम्हारी इच्छा वहां जाओ, बहुत से वन है, वनों के नाम से बड़े बड़े जंगल थे, काम्यक वन, आपने द्वेत वन। तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि ठीक है, जिस वन के वहां पांडव रहते हैं उस वन में नहीं जाएंगे। सभा का ये अभिप्राय था कि एक प्रकार से ये अपना ऐश्वर्य ले जाकर उनको दिखाएंगे, तो एक प्रकार से उनके मन के बीच के वहां दुख हो गया। ये तो समझा ही नहीं था कि वहां जाकर के उनको मारने के लिए जाते, तो जैसे अपना दीवार दिखाने के लिए जाते। उसके बाद वे एकांत में आकर उन्होंने फिर विचार किया कि ये जो भीष्म आदि जो बूढ़े हैं तो यूं ही बढ़ते रहेंगे, अपने को अपना काम बनाना है, अपना तो प्रयोजन ही एक प्रकार से समझो कि पांडवों को मारने के लिए जाना है, एक प्रकार से घोष यात्रा का तो निमित्त है, वो तो बहाना है, जाकर क्या करेंगे, बोला कि किसी की बात न सुनो, चलो चल दिए उस तरफ कि जहां पांडव लोग वास करते थे, उस वन में जाकर के कि मुकाम दिया या डेरा जमाया। जब इनका ये विचार एक प्रकार से जहां पांडव रहते हैं वहां जाने का हुआ, तो देवता लोग मन की बात जान जाते हैं, इस वजह से इंद्र इस बात को जान गए। इतना सोचा कि पांडव निर्दोष है, और उनको ऐसा समझ के ये लोग अपने वन में जा रहे हैं मारने के लिए, तो उसका उपाय करना चाहिए। तो अपनी राजसभा के बीच के वहां स्वर्ग में एक सब जो सभासद बैठे हैं उनके सामने बीड़ा रखा कि कोई है इस बीड़े को उठाने वाला, कि दुर्योधन को एक प्रकार से और उनके साथियों को बांध कर ले आए और उनकी जो सेना है उसको एकदम नष्ट भ्रष्ट कर। तो चित्रसेन नाम का एक गंधर्व था कि जो अर्जुन के साथ उसकी दोस्ती थी, अर्जुन का मित्र था, उसने कहा कि मैं ये बीड़ा उठाता हूं, मैं दुर्योधन से जाकर लड़ाई करूंगा, समझो कि खलबली मचा दूंगा, सेना को मैं मार डालूंगा, कितनी भाग जाएगी, जो बच्चे रहेगी उसको मैं बांध कर ले आऊंगा। तो चित्रसेन गंधर्व गंधर्वों की सेना को लेकर के वहां आप पहुंचा कि यहां दुर्योधन समझो कि आकर के डेरा लगाने वाला है, उसके पहले ही वो पहुंच गया। दुर्योधन का जो खूब बढ़िया जो तलाव है उसी पर उन्होंने डेरा डाल दिया और समझो कि उसमें स्नान पान करने लगे। अब दुर्योधन और भी आ गए तो वे थोड़ी दूर पर ठहरे, तो जब ये तालाब को नष्ट चले लगे, ये देख करके तालाब के रुखवाले जो हैं, उन्होंने कहा भी ये दुर्योधन का तालाब है और महाराज की आज्ञा के बिना इस तालाब के जल को कोई विहार में नहीं ला सकता, तो तुम कैसे इसको जल को इसको खराब कर रहे हो। दुर्योधन की विशेष आज्ञा, ये दुर्योधन के लिए एक प्रकार से है, उनकी आज्ञा के बिना दूसरा आदमी इसको अपने काम में नहीं ला सकता। तुम किसकी आज्ञा से यहां स्नान पान कर रहे हो और किसकी आज्ञा से यहां तुम लोगों ने पड़ाव डाला है। उन्होंने कहा कि हमारा तो मालिक चित्रसेन गंधर्व है, और उनके हुक्म से भी हम एक प्रकार से इस तालाब के जल को घर में ला रहे हैं और उसी के हुक्म से यहाँ हम लोगों ने पड़ाव डाला। बोलो नहीं, इस जल को आप लोग व्यवहार नहीं कर सकोगे बिना विरोध नहीं किया गया के बिना। किंतु उन्होंने विरोध नहीं किया गया, नहीं मानी, साफ जवाब दे दिया कि हम नहीं जानते दुर्योधन कौन है, हम तो अपने मालिक चित्रसेन गंधर्व को जानते हैं, उसी के आज्ञा में चलने वाले हैं। जो ग्वाले उन्होंने जाकर के संजू की दुर्योधन से खबर ली कि बड़ी भारी एक सेना गंधर्वों की है और जो वो खराब कर रहे हैं स्नान पान करके, और आपकी जो भाई देते हैं आप कभी तो कहते हम नहीं जानते दुर्योधन को, उसकी आज्ञा एक प्रकार से हम नहीं मानते। तो दुर्योधन को बड़ा भारी क्यों गया कि देखो मेरा सारी दुनिया में भारत भर में शासन है, पृथ्वी भर में शासन है, अभी तू साधारण आदमी कहते हैं दुर्योधन गया क्यों नहीं मानते, बहुत ही सेना भेज दी सबको पकड़ करके ले आओगे, और यदि आज्ञा नहीं माने और पकड़ा नहीं जा सके तो मार डाल। ये लोग आए आकर के आपसी के बीच के वहां समझो कि कहा कि यहां से भाग जाओ, उन्होंने कहा कि नहीं मारेंगे, तो फिर युद्ध छिड़ गया तो बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। उसके बाद के वहां दुर्योधन की और भी जो सेना थी जब इनकी पेश नहीं आई तो सबकी सब सेना वहां चली आई, अब तो बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। आखिर के वहां युद्ध होते होते दुर्योधन की सेना बहुत सी मारी, और बच्ची जो सेना मार पड़ने से दूर दूर भागने लगी, तब जो आदमी शेष में वहां बच गए उनको गंधर्वों ने बांध दिया। साथ के मास्टरियां भी आई थी सैर करने के लिए बन के वहां, तो दुर्योधन को और उनकी अस्थियों को बांध करके रख के अरे चल दिए, और भी जो आदमी उनके पंजे मारे बांध करके ले गए, और समझो कि वहां का मैदान साफ हो गया, बहुत से मर गए, बहुत से तो मर गए और बहुत से भाग गए। उसे भागे हुए मनुष्यों के बीच के वहां जो दुर्योधन का जो मंत्री है वो पांच सात आदमियों को जो प्रधान प्रधान आदमी उनको लेकर के महाराज युधिष्ठिर के पास में गए। राजा युधिष्ठिर से कहा कि महाराज राजा दुर्योधन एक प्रकार से आपका दर्शन करने के लिए आ रहे थे, समझो कि गंधर्वों ने बड़ा अत्याचार किया, सेना को तो नष्ट कर दिया और दुर्योधन आदि को बांध कर ले जा रहे हैं, साथ में औरतें भी हैं, तो आपके रहते आपके घर की औरतें दुर्योधन आदि इस प्रकार बंदी होकर के जावे तो बहुत ही दुखी और शर्म की बात है। तो राजा युधिष्ठिर ने कहा कि भाई भीम, भाई अर्जुन, मैं यज्ञ की दीक्षा लेकर के और एक प्रकार से जग कर रहा हूं, दीक्षा नहीं ली होती तो मैं खुद जाता, किंतु मैं बीच में उठ नहीं सकता, इसलिए तुम जाओ और हमारे भाई दुर्योधन को छुटा करके जाओ। पहला तो प्रेम से कहना, प्रेम से नहीं माना तो फिर जिस किस प्रकार से थी समझो कि युद्ध करके छुटा कर लिया। भीमसेन ने कहा कि महाराज राजा दुर्योधन आपका दर्शन करने के लिए आ गए, क्या बात आप विचारो कि क्या संभव है। बोला हम लोगों को इस विषय में ये धारणा नहीं करनी चाहिए, जिसे विचार से क्यों नहीं आओ, अपना कर्तव्य का पालन करो, तो वो विपत्त में पड़ा है तो उसको छुटाना जो है ये उत्तम है। अपना कोई शत्रु हो है और शत्रु को एक प्रकार से युद्ध करके के उसको जो हराना है वो नीति है, सो नीचे दर्जे की दंड नीति, उससे शाम नीति बढ़ करके है इस प्रकार से, तो उसको जो छुटाना है ये ही एक प्रकार से उस पर विजय है, मारने की अपेक्षा या युद्ध करने की अपेक्षा। इस बात को अर्जुन समझ गए, अर्जुन ने कहा भाई भीम तो महाराज की आज्ञा है तो वही काम अपने करना चाहिए, हाथ में अस्त्र लेकर के दुर्योधन के मंत्री से अर्जुन कह रहा कि मंत्री साहब मैं आपके सम्मुख प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक दुर्योधन को छुटा करके मैं नहीं लाऊंगा तब तक हथियार अपने शरीर से नहीं उतारूंगा। अर्जुन की भीष्म की प्रतिज्ञा संसार में प्रसिद्ध थी, तो अर्जुन भीमसेन को साथ में लेकर के और वहां युद्ध के वास्ते चला गया। चित्रसेन की जो सेना है वो थोड़ी दूर गई थी और उन्होंने जोर से उनको नावड़ दिया और खड़े रहो ऐसा कहने लगे और वे भी ऐसा ठहर गए। कौन आता है प्रतिपक्षी, बोले दुर्योधन को छोड़ दो। उन्होंने हाव भाव दिखाया कि भी हम लोग तो तुम्हारे उपकार के वास्ते इनको पकड़ के ले जा रहे हैं, तो बोले हमारे उपकार के वास्ते ले जा रहे हो तो हमारा उपकार छोड़ने में ही छोड़ दो। तो बोले छोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि इंद्र का हुक्म है तो उसको पकड़ के ले आओ, अगर नहीं छोड़ोगे तो छोड़ना होगा, हम युद्ध करेंगे। तो चित्रसेन गंधर्व ने कहा कि ये प्रयास है, तुम मुझको नहीं जानते, मेरा नाम चित्रसेन गंधर्व है, आपको मालूम है कि एक प्रकार से थी जब तुम हमारे से हार गए थे तो हमारे से तुम मित्रता करी थी, वही तो मैं चित्रसेन गंधर्व हूं। अर्जुन ने हार तो क्यों गया था और तेने मेरे से मित्रता करी थी, तो कोई बात नहीं अब लड़ो। इस प्रकार से आप श्री के वहां कड़ाकड़ी होकर के और घोर युद्ध से चिड़ गया। उस युद्ध के वहां आगे में चित्रसेन गंधर्व हार गए। चित्रसेन गंधर्व के हारे जाने पर चित्रसेन पर बड़ा असर पड़ा कि देखो राजा युधिष्ठिर भी धन्यवाद देने के योग है, हम उन लोगों के मित्र हैं और उनकी रक्षा के वास्ते इनके शत्रुओं को पकड़ के ले जा रहे हैं। इनमें जो कैसा स्वभाव है कि अपने शत्रु की पक्ष करके के मित्रों से लड़, तो उन्होंने कहा कि हम भी महाराज युधिष्ठिर के दर्शन करेंगे। अब संधि हो गई, बोले चलो। सब दुर्योधन आदि को सबको लेकर के वहां राजा युधिष्ठिर के पास में आए दर्शन करने के लिए। चित्रसेन आदि गंधर्वों ने नमस्कार किया महाराज को। महाराज ने पूछा कि दुर्योधन को रथ से खोल दिया, छोड़ दिया गया? बोले नहीं, अब तो अभी तो रथ के ही बन जाऊंगा। बोले पना उसको खोलो, उसके बाद हमारे से मिल। तो उसको खोल करके ला करके सामने खड़ा कर दिया जैसे कोई बलि का बकरा हो। अब दुर्योधन का तो मरण सा हो गया। सोचा देखो तुम्हारी क्या दशा, अब मुझको शत्रुओं ने छुटाया तो संसार के बीच में मेरा जीना भी ऐसा धिक्कार, ऐसा मन ही मन में करने लगा। और भूमि को आपने समझो पैर की अंगुलियों से नाखूनों से कुचलने लगा खड़ा खड़ा। दृष्टि द्वारा समझ गए कि ये बड़ा संकोच में पड़ गया है, संकोच और दुख के बीच के में इसका चेहरा मलिन हो गया, तो इसको तो एक प्रकार की कैद हो रही है, तो इसको किसी बहाने से यहाँ से भेज दिया जाए तो अच्छा है। बोले भाई दुर्योधन, तुम्हारे भाई लोग जो है सो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तुमको खोज रहे होंगे, इसलिए तुम अपने भाइयों के पास में शीघ्र जाओ। ठीक है, वो चुपचाप एक प्रकार से वहां से रवाना हुआ। आगे से देखा तो कोई मिला नहीं, तो जहां पड़ाव डाला था वहां दुर्योधन ने कुशाकाश में बिछा करके वहां एक प्रकार से अनशन व्रत करके के और तपस्या करना आरंभ कर। उसके बाद के बीच के मां समझो कि कर्ण जो है शकुनी है दुशासन ये सब पहुंचे। उन्होंने पूछा कि महाराज साहब आपको किसने छुटाया? बोला तुम लोग तो छोड़ करके चले गए, क्या पूछते हो? पूछते तो महाराज युधिष्ठिर ने मुझको छुटाया पांडवन। तो आपके चेहरे पर इतनी ग्लानी और मलिनता क्यों है? उन्होंने छुटाया तो इसके लिए आपको एक प्रकार से इतना चित्र विचार क्यों करना चाहिए? जब आप राजा हैं तो इस राज में रहने वाले सभी आपकी प्रजा है, तो इस समय पांडु तुम्हारी प्रजा है। राजा का उपकार करना प्रजा का धर्म होता है, तो उन्होंने अपने धर्म का पालन किया, इसमें आश्चर्य की बात क्या है। उसने कहा कि एक प्रकार से बात यह है कि मैंने अपने मन में निश्चय कर लिया कि मैं पांडवों के साथ में कभी लड़ाई नहीं, और मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं। हम किस उद्देश्य से आए थे, उसका क्या नतीजा हुआ। मैंने तो यही निश्चय कर लिया कि एक प्रकार से थी अनुसंधान करके तपस्या करके अपना जीवन सो नष्ट कर दिया। अब मैं लौट कर वापिस जीता जी जाऊं, एक प्रकार से हमारा मन नहीं करता। अब सो गए, अब वो अपने इस प्रकार से ध्यान लगाया, तपस्या करने लगा, थोड़ा आज आकर उसको स्वप्न आ गया। अब स्वप्न के बीच में क्या देखा है कि एक दानवों की सभा में अपना देखा। दानवों लोग कहते हैं कि क्या एक प्रकार से दुर्योधन तुम्हारा स्वभाव बदल गया। अरे क्या को तो हम लोगों ने इस तरह से इसी में देख भेजा था कि पांडव जाकर के तुम ला कर, अब तुम कहते हो मैं नहीं करूंगा, चाहो तुम लड़ाई करो। और हम लोग भी उस मनुष्य के शरीर के वहां प्रवेश कर करके की मदद करेंगे। जितने दानव हम लोग भीष्म द्रोण आगे सब में प्रवेश कर जाए, उनकी बुद्धि को नष्ट कर दें। अब तुम जाओ एक प्रकार से साथ लेकर के खूब लड़ाई करो। पानी इतने आगे खुल दी, आगे खुली तो एक प्रकार से वे सब बैठे थे ना तो खुली थी। उन्होंने पूछा कि वहां क्या बात, बात क्या हुई, ऐसा सपना है। तो बोले ठीक है, फिर जो कि आपका सपना है हम लोग कल एक प्रकार से वही सिद्धांत है, फिर अपने को जैसा स्वप्न है वैसे करना चाहिए। उनको समझा बुझा करके सर बजेगी शहर में जाकर के सुबह मनेगी। बोले सुबह में जाकर के कहेंगे क्या कि हमारी याद अच्छा हुई, पांडवों ने छुटाया तो एक प्रकार से हमारे लिए बहुत ही लज्जा की बात है, मरण के समान। नहीं गए सभा में, कई दिन तक नहीं गए, बाद में गए होंगे। तो बात यह है कि दुर्योधन का कितना भारी आपने समझो कि नीच स्वभाव था, किंतु दुर्योधन के साधु बर्ताव का इतना असर पड़ा कि दुर्योधन का स्वभाव भी बदल गया। तो खराब से खराब स्वभाव भी बदल जाता है। उस समय में जिन दुर्योधन की मृत्यु होती तो अच्छी गति होती, किंतु फिर दुष्टों के संग से उसका स्वभाव फिर खराब हो गया। दुर्योधन का भी असर पड़ा, अरे दुर्योधन के बराबर युधिष्ठिर का भी असर पड़ा, और फिर उसके बाद में दशासन शकुनी और कर्ण का भी असर पड़ गया। बड़ा तरुण के साथ उनका मदद पड़ी आगे के मुश्किल में तुम हमको तो ये निकलाना है कि ऐसा दुष्ट स्वभाव भी बदल जाता है अच्छे संग से। तो हम लोगों को अपने स्वभाव को सुधारने के लिए अच्छे पुरुषों का संग करना चाहिए। इसलिए शास्त्रों ने सत्संग की बड़ी महिमा गाई है, बिना सत्संग के बिना हरि की कथा नहीं मिलती। हरि के गुणों की प्रभाव की तत्व रस की कथा नहीं मिलती। हरि के नाम रूप और महिमा की लीला की कथा नहीं मिलती। उस हरि की कथा के बिना मोह का नाश नहीं होता, और मोह के नाश के बिना भगवान के मां दृढ़ जो अनुराग है प्रेम वो नहीं होता, और बिना भगवान के मां प्रेम हुए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं। तो इसलिए भगवान की प्राप्ति के वास्ते समझो कि सत्संग एक नंबर चीज है। क्या बताया जाता है कि ताप सार्ग अप बार्ग सुख धरी तुराय कर सकल मिली जो सुख लव ये ताप स्वर्ग का जो सुख है अब वर्ग माने मुक्ति मुक्ति का सुख है दोनों को तराजू के एक पल में रखो और दूसरे पल के बीच के मन एक क्षणमात्र का सत्संग रखो तो क्षणमात्र के सत्संग के समान ये दोनों मिलकर के भी नहीं है। इस पर यह विचार करना चाहिए कि एक क्षण का हाथ है तो वो कौन सा है तो सत्य है परमात्मा का और परमात्मा जो सुन रहे हैं सत्संग